ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज की जो ये एक नया दिन है, आप यहाँ पधारे हो, भारत के विभिन्न प्रभागों में से आप सब पधारे हुए भाई बहनों का इस शांतिवन के पावन प्रारंग में, इस शांतिमय वातावरण में मैं ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा और बिजनेस और इंडस्ट्री विंग्स के द्वारा आप सभी का तहे दिल से इसमें हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। यस, ओके। तो आज विशेष इस प्रथम सत्र में हमारे मध्य है आदरणीय राजयोगिनी जागृति दीदी जी। तो आज ये सबसे पहला सत्र जिसमें हम जानेंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। यस, आप सब यहाँ आए तो कुछ लक्ष्य तो जरूर लेकर के आए होंगे। तो भी दीदी इस 3 दिन के सत्र में या 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में चलने वाले जो भी बातें हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। जागृति दीदी जी पिछले 20 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और 17 से भी अधिक सालों से विले पार्ले सब जोन के अंदर जितने भी सेवा केंद्र है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी अपनी लौकिक पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरे करे है और अभी प्रेजेंट में बोईसर में स्थानित विराज प्रोफाइल सेवा केंद्र पर वो अपनी ईश्वरीय सेवाएं अथक रीति से देते हैं। दीदी जी के परिचय में कहना चाहूंगी कि दीदी जी का ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत रमणीक और सरल है, इसलिए ईश्वरीय ज्ञान कोई भी आत्मा बहुत सहज रीति से अपने जीवन में धारण कर सकती है। कईयों ने अपने जीवन को इसमें धारण करके अपने जीवन को परिवर्तन किया है और जीवन को श्रेष्ठता की ओर लेके जा रहे हैं। दीदी जी का हमेशा भाव रहता है, कल्याण की भावना विशेष सभी के प्रति रहती है, इसलिए उनमें रचनात्मकता बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, नवीनता भी बहुत रीति से करते हैं। तो नवीनता से और रचनात्मकता से वो नए नए प्रोग्राम कराते रहते हैं। तो ऐसे उन्होंने कई स्कूल कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं, साथ साथ बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग में भी ये अपनी अथक सेवाएं देते रहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी दीदी जी से कि वह आपको भी आज लाभान्वित करें। और एक अनुरोध है कि जो भी भाई बहने एकदम बाजू में बैठे हुए हैं वो प्लीज थोड़ा सा बीच के जो 2 रो है उसमें आकर के बैठ जाइए। इधर की माताएं जो है वो यहाँ से पीछे वाली इसमें जाकर के बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जैसे बहन ने बताया, इस मधुबन में, इस ईश्वरीय प्रांगण में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी ये जितने भी दिन कॉन्फ्रेंस है 26 से 30 रोज आप सभी का स्वागत होगा, शब्दों से होगा, नृत्य से होगा, संगीत से होगा। तो आपको क्या अनुभव करना है, हम कहाँ आए हैं, सभी कहाँ आए हैं? हाँ जी, कहाँ आए हैं? ब्रह्मा कुमारीज में जी। आप सभी जिस स्थान पर आए हैं ये बहुत विशेष स्थान है। इस स्थान के लिए हम कहेंगे ये ईश्वरीय भूमि है, तपस्या भूमि है। यह स्थान जहां अनेक लोग आकर के अपने जीवन का लक्ष्य लेते हैं, तपस्या करती है, अपने आप को शक्तिशाली बनाती है। यह स्थान एक तीर्थ भी है क्योंकि स्वयं परमात्मा की अवतरण भूमि है। यह स्थान उन लोगों के लिए भी है जो समझते हैं आध्यात्मिकता की अभी क्या जरूरत है, सोचते हैं ना कहीं, तो इसलिए पहला जो सत्र हम रखते हैं वो यही रखते हैं कि हम यहां क्यों आए हैं। आप सभी ने भी कुछ न कुछ संकल्प लेकर आए होंगे और आप सभी ये जानते होंगे कि आप यहां पर किसके बुलावे पर आए हो। हां जी, किसके बुलावे पर आए हैं? भगवान के बुलावे पर आए हैं। तो उन्होंने आपको पहले नहीं बुलाया। आप सभी जानते होंगे कि आप जिस स्थान से आए हैं, जिस सेवा केंद्र से आए हैं, वहां पहले भी आपको कई बार निमंत्रण मिले होंगे ना, पर हो सकता है आप इस बार ही पहुंच पाए हो। सोचिए, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन कराई है, रजिस्ट्रेशन कराए थे, पर वो कुछ कारण से पहुंच नहीं पाए। तो आप सभी वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो जो यहां पर, इस स्थान पर, इस तीर्थ भूमि पर पहुंच गए हो। तो स्वयं में ये संकल्प क्रिएट करें, ये थॉट क्रिएट करें कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो यहां पहुंच गए। कल से हमारे पास कुछ फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि दीदी ये कारण से नहीं आ पा रहे हैं, ये मीटिंग्स आ गई है इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, परंतु जो पहुंच गए वो भाग्यशाली, और जो नहीं पहुंचे वो भाग्यशाली नहीं है। उनके लिए कहेंगे क्या? कहेंगे कुछ अच्छा संकल्प बताएं उनके लिए, वो अगली बार पहुंचेंगे, अगले कार्यक्रम में पहुंचेंगे, वो भी भाग्यशाली है। तो यह जो तैयारियां हैं आपके यहां आने की, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ आपकी टिकट कटाई और आप पहुंच गए, आपने रजिस्ट्रेशन कराया और आप पहुंच गए, परंतु इसके पीछे जिन्होंने आपको निमंत्रण दिया है उन्हों की कितने समय की तपस्या है, कितने समय से वो आपको निमंत्रण दे रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए 4 महीने से तैयारियां हो रही होती हैं। उसके साथ साथ जो यहां ये स्थान से भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं, तो इसीलिए सिर्फ एक बात नहीं होती है हमारे यहां आने की, उसके पीछे बहुत सारा प्रयोजन होता है, तैयारियां होती हैं, और फिर उसके साथ साथ ईश्वर का आपके लिए बुलावा और आपका भी पक्का पक्का निश्चय। आप जो सभी यहां पधारे हो, कुछ ना कुछ विघ्न भी आया होगा, कुछ ना कुछ बातें भी आई होंगी, कैंसल करे या चले जाए, अच्छा हमारे साथी तो नहीं आ रहे हैं, मैं अकेला कैसे जाऊं, अच्छा घर में पीछे ये तकलीफ आ रही है, जाए या नहीं जाए। तो बहुत सारे उन विघ्नों को पार करके आप सभी यहां पहुंचे हो, उसकी सभी को बधाई हो। तो हम आप सभी के साथ एक एक्टिविटी करेंगे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या संकल्प है, क्या विचार है यहां आने के लिए। तो इसके लिए आपके जो करीब जो बाजू में बैठे हैं उस एक व्यक्ति से आप हाथ मिलाएं, आपके जो बाजू में बैठे हैं, कोई भी एक व्यक्ति से आप हाथ मिलाए, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ, कोई भी एक व्यक्ति से मिलाए, कोई भी एक व्यक्ति से ऐसे मिलाए कि सभी के पास कोई पार्टनर हो। चलो, सभी ने मिलाए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट सभी। हाँ, ये ठीक है, जिन्होंने मिलाए हाथ, जिन्होंने हाथ मिलाए, जस्ट शो मी योर, रेज योर हैंड्स। ओके, और यहां पर कोई हाथ नहीं उठा रहे माताएं? आ, बढ़िया, ओके, ठीक है। तो आप सभी एक दूसरे को जानते होंगे ना, जो बाजू जिनसे हाथ मिलाए उनको आप जानते हो। अच्छा, तो आपको क्या करना है, जिनसे आपने हाथ मिलाए आप उनके साथ थोड़ा बात करेंगे, तीन बातें करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे कौन सी तीन बात करनी है। आप अपना नाम बताएंगे, दूसरा आप यहां पर क्यों आए हैं, आपका आने का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, और तीसरा आपकी कोई दो विशेषताएं बताएंगे। पहला क्या बताएंगे? नाम। दूसरा क्या बताएंगे? आपका यहां आने का लक्ष्य, पर्पस क्या है, और तीसरा आपके दो गुण, दो अच्छाई, है ना? ये नहीं बताना मैं अच्छा खाना बनाती हूं, वो विशेषता है, पर कुछ आंतरिक गुण बताएंगे। जैसे मेरे में धैर्यता बहुत है, मैं किसी को भी जल्दी क्षमा कर देती हूं, मैं पुरानी बातें भूल जाती हूं, है ना, कोई बातों को पकड़ कर नहीं बैठती हूं। तो ये आंतरिक गुण बताएंगे, ठीक है? आप सभी के पास दो मिनट है, ओके, एक मिनट सुनिए, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत अंदर से खुशी हो रही है बात शेयर करने के लिए। पर आप जब अपना बताएंगे, उसके बाद बड़े ध्यान से आपके पार्टनर की बात सुनना। ऐसे नहीं मेरा हो गया अभी तुम जानो, अपने पार्टनर की बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर हम आपस में शेयर भी करेंगे। चलिए आप शुरू करें, आपके पास दो मिनट है। ओम शांति। आप सभी ने शेयर किया आपस में। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो हाथ उठाए, शेयर नहीं किया आपस में, बातचीत नहीं की वो हाथ उठाए, बहुत अच्छा, उठाए उठाए, जिन्होंने नहीं किया अच्छे से हाथ उठाए। अच्छा, मैं देख तो बहुत सारे लोगों को रही थी जिन्होंने नहीं शेयर किया। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर हमें कुछ अनुभव करना है तो हम इन एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट करें, प्रयास करें, है ना, क्योंकि कुछ कारण से करा रहे होंगे। आप कहेंगे मेरे पास कोई पार्टनर नहीं था, जहां चाह है वहां राह, आप ढूंढ सकते थे पीछे बाजू में, हो सक मिल सकता है आपके जैसे ही कोई हो सकते हैं। तो जिन्होंने शेयर किया आपस में, उनमें से कुछ एक जो है, क्योंकि सभी से तो नहीं शेयर करवाएंगे, पर वो कुछ जो भाई बहने हैं वो शेयर करेंगे, परंतु इम्पॉर्टेंट होगा वो अपने फ्रेंड की बातों को शेयर करेंगे। आपने अपना तो बता दिया, ये मेरा नाम है, मेरा ये पर्पज है और ये मेरी स्पेशलिटीज है, पर आप अभी अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो कौन शेयर करना चाहता है, कौन शेयर करेगा? हाँ जी, बहुत अच्छा, भाई जी ने पहले हाथ उठाया है। हाँ जी भाई, हाँ जी आइए, आपके पास आपके दोस्त के साथ आगे आए भाई, आपके दोस्त के साथ आगे आए, आपके पार्टनर जो है उनको साथ में लेकर आए। आप लोगों ने अभी अभी बात आप लोगों ने की है, आप दूर बैठे थे, आजू बाजू वाले नहीं मिला रहे थे आप? अच्छा हाँ, ओके, अच्छा ठीक है ठीक है, आप टर्न हो जाए ऑडियंस की तरफ। हाँ, अभी शेयर करें, आप अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करें, इनको अगर हम माइक दे सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए, आपको माइक देंगे इफ पॉसिबल। भाई है कोई? जस्ट चेक। अच्छा, आप स्टेज पर आकर शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा है। आ जाइए आ जाइए। आपको ये तीन ही बात बतानी है, नाम, आप क्यों आए हैं वो शॉर्ट में बताएंगे, और आपकी दो विशेषताएं आपको आपके पार्टनर का बताना है। माइक ऑन करेंगे प्लीज।
ओम शांति।
ओम शांति।
भाई जी का नाम है सचिन पाटिल, जयसिंहपुर से आया है, और इन्होंने मुझे यहाँ आने का लक्ष्य ये बताया कि ईश्वरीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए आए हैं। ये ऑलरेडी 9 साल से ज्ञान में हैं, और इनके दो गुण जो इन्होंने बताए वो है शांत स्वरूप है और ये जल्दी गुस्सा नहीं करते, ये इनके दो गुण हैं। ओम शांति।
बहुत अच्छा।
सच्चानंद उच्चवानी अमरावती से आए हैं, और ये भी शांत स्वरूप है, इन्हें भी जल्दी गुस्सा नहीं आता और दूसरों को ये जल्दी माफ कर देते हैं।
यहाँ आने का उनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बताया आपने? भाई जी आपको बताया होगा उन्होंने यहाँ आने का पर्पस।
इनके पास जो ज्ञान है वो दूसरों को बताने के लिए यहाँ आए हैं।
बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, धन्यवाद जी।
एक लाइन बोल दो। मेरा पर्पस ये है आने का, जो ईश्वरीय ज्ञान से मुझे जो फायदा मिला है वो मुझे भाई अपने भाइयों को भी मिले, इसलिए मैं लाया
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन आना चाह रहे थे? भाइयों ने हाथ उठाया था, भाइयों ने हाथ उठाए थे। यहां से आएंगे भाई जी? आपको ध्यान से सुनना है सो देट आप यहां आकर के पूछना नहीं पड़े आपने क्या बताया था, ध्यान से आपको सुनना था। हाँ जी, आप अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करेंगे।
मैं सूबेदार महिपाल सिंह हाथरस सेंटर से आया हूँ।
भाई जी आप, भाई जी आप अपने दोस्त के बारे में बताएंगे, फिर आपका दोस्त आपके बारे में बताएंगे।
पहला जो पॉइंट था हमारी दीदी जी का, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सूबेदार महिपाल सिंह है और मेरे पार्टनर का नाम सूबेदार भीमसेन है
जी।
नंबर दो, दीदी ने बताया था कि आप यहाँ मतलब क्यों आए हैं। अब हमारी शांता दीदी जी वहां पर हमें अपने प्रवचन में बताती रहती हैं, आप एक बार कैसे भी वहां बंधवन जाए, जब आपको पता चलेगा ईश्वरी शक्ति क्या होती है। तो दीदी जी के प्रवचन वहां सुनते रहते हैं, दीदी जी से हमें इतनी प्रेरणा मिली कि हमें कई बार दीदी जी ऐसा कह रही थी कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो कैंसिल हो जाता है। वास्तव में वो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मगर इस बार ईश्वरी शक्ति बाबा की शक्ति ऐसी हुई कि हमें यहाँ पर लेकर के आई, और लेकर के ही नहीं आई, मेरे साथ में अभी 6-7 वाली दो बहनें भी आई हैं, बेटी भी आई है, और हम 5-6 लोग भी वहां से हाथरस से आए।
भाई जी आपको अपने दोस्त के बारे में बताना है, वो यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है ना?
यहाँ हमारा मुख्य आने का कारण, जो वहां प्रवचन सुनते हैं तो वो यहाँ पर आने का कारण, तुम्हारी जो दीदी जी थे उन्होंने प्रेरणा दी कि आप वहां मधुबन जाएं, मधुबन में आकर के आपको ईश्वरीय एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे कि आप औरों को भी प्रेरित कर सकेंगे।
जी बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद।
ओम शांति।
भाई आप अपना बताए, आप उनका बताएं, उन्होंने बताया दो बार भले, आप उनका बताएं।
ओम शांति। मेरा नाम भीमसेन है। ये भाई साहब ने तो सुविधा बना दिया, वैसे मैं तो जवान हूँ, पर मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे आया हूँ मैं, मेरी बहन, मेरी बेटी भी ब्रह्मा कुमारी है, वहाँ पर है असाइन में, और एक ही बेटी है, और मैंने बाबा को समर्पण कर दिया है।
बहुत जी, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई।
और मैं यहाँ कई बार आया हूँ, यहाँ जैसी शक्ति है, यहाँ इतना शक्ति मिल रही है, तो वो शक्ति मैं दोबारा भी लेना चाह रहा हूँ। और जो मेरे भाई साहब हैं, इनको हम लेके ही आए हैं। क्यों लेके आए? यहाँ आकर के कम से कम मालूम तो पड़ेगी कि बाबा का ज्ञान कैसे चल रहा है पूरे विश्व में। 147 कितने देश हैं, उनमें बाबा पूरे संसार को देख रहे हैं, तो हम अपने घर को भी नहीं देख सकते, तो जो हमारा ही घर है ये पूरा, यहाँ आए तो बाबा के घर में आए तो जो हमारा ही घर है।
जी बहुत अच्छा, जो ये घर जो भाई ने कहा, बहुत सुंदर बात बताई, जो परमात्मा का घर है वो हमारा भी घर है। बहुत अच्छा, आए भाई अपना स्थान ग्रहण करें, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का। हम ये जानना चाहते थे यहाँ आने का लक्ष्य। भाई ने बहुत सुंदर बात बताई कि हमारे दीदी जी हमें बार बार कहते थे कि आप एक बारी जाइए, एक बारी जाइए, मधुबन होकर आइए। तो पहली बारी यहां पर कौन आए हैं वो हाथ उठाएंगे, पहली बारी। अच्छा ओके, हाथ पीछे करेंगे, थैंक यू। जो जबरदस्ती आए हैं वो हाथ उठाएंगे, जिनको आना पड़ा वो हाथ उठाएंगे। हाँ जी हाँ जी, आराम, कोई दिक्कत नहीं, हाथ उठाए। जिनको आने की दिल नहीं थी पर कोई आ रहा था उसके साथ साथ उनको आना पड़ा, जी ओके ठीक है। धन्यवाद। क्योंकि हम जब भी कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं, हम जरूर पूछते हैं कि कौन ऐसे हैं जिनको फोर्सफुल्ली आना पड़ा हो। क्योंकि अक्सर करके हमारे जो कंपनीज में प्रोग्राम होते हैं, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उस कंपनी में काम करने वाले, उनके तो जो एचआर हेड होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो कह देते हैं कार्यक्रम में जाओ, तो उनको जाना ही है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है। फिर हम जब उनको पूछते हैं, भाई क्यों आए हो यहाँ, क्या जानने आए हो, बोले हमें जानना वानना कुछ नहीं, ले भेजा गया है। तो बहुत ही उनका ऑनेस्ट, ईमानदारी से जवाब होता है कि हम कोई अपने इंटरेस्ट से नहीं आए हैं, पर हमें भेजा गया है। परंतु अगर हम आ ही गए हैं तो अभी क्या करेंगे? क्योंकि कोई जो फोर्सफुल्ली आए हैं, आ ही गए हैं तो क्या करेंगे? तीनों दिन तो ऐसे नहीं सोचेंगे, अरे मुझे जबरदस्ती भेजा, मुझे फोर्स से भेजा, आना ही नहीं था। पर अगर आ गए हैं तो हम यहां से क्या लाभ उठाए, है ना? तो इस बात का, इस समय को हम कैसे बिताए, कैसे सफल करें, कैसे सदुपयोग करें, इस बात को हम लक्ष्य में लेंगे, ध्यान में लेंगे। तो हम यहां पर ये बात बहुत क्लियर करना चाहते हैं कि हम यहां क्यों आए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने दिल से आए होते हैं या किसी के निमंत्रण पर आए होते हैं, पर ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे यहां आकर क्या करना है। भाई ने बहुत सुंदर बात बताई, जो हमारे पास ज्ञान है वो हमें औरों के साथ शेयर करना है, इसीलिए आए हैं। जो हमारे पास कोई बातें हैं उसको और क्लियर करना है, मन में कुछ प्रश्न होते हैं उसको क्लियर करना है, उस प्रश्नों को सुलझाना है, इसलिए आए हैं। तो यही बातों को हम अभी समझने का प्रयास करेंगे और क्या विधि होंगी, ठीक है ना? तो जो पहली बात है जो हम आप सभी को लक्ष्य देना चाहते हैं, यहां आने का पर्पस स्पष्ट करना चाहते, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होगा, कहते हैं लक्षण भी नहीं आते, उसको प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते हैं। और इस पूरे सेशन के दरमियान जब आपको कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, आप बड़े आराम से, बड़ी शांति से उसका उत्तर देंगे। और जो जो सेंटर पर आते हैं, कई साल से ज्ञान में चल रहे, उनको निवेदन है कि उन प्रश्नों का वो जवाब ना दे। हमें पता है आपको बड़े उमंग उत्साह होता है, पर हम जो नए भाई बहने हैं उनसे चाहेंगे कि वो प्रश्नों का जवाब दे। अब सभी के साथ एक कहानी शेयर करते हैं। एक बारी एक व्यक्ति थे और उनको मन में बहुत प्रश्न रहता था कि मैं कौन हूं और मेरा इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है। बहुत सारे लोग आजकल ये सोचते हैं कि हम क्यों आए इस दुनिया में, कब जाना है, क्या करना है। तो ये इनको प्रश्न बहुत आता था। और एक बारी जब वो रात्रि को सो रहे थे तो ये प्रश्न उनको इतना सताने लगा, तो उन्होंने सोचा किसी को तो जाकर पूछना है। और उनको याद आया कि उस गांव या शहर जो था उसके थोड़े बाहर साइड एक कोई संत महात्मा रहते थे, उनको जाकर मैं ये प्रश्न पूछता हूं। परंतु रात्रि का समय था, पर भाई को अंदर में शांति नहीं हो रही थी, इसीलिए वो वहां गए और दरवाजा खटखटाया। तो जब भी हमारे घर का कोई दरवाजा खटखटाते हैं, हम अंदर से क्या पूछते हैं, कौन हो? वो संत महात्मा जी ने भी यही पूछा, कौन? और वो भाई ने क्या कहा, यही जानने आया हूं, दरवाजा खोलिए। क्या जानने आए हैं भाई? मैं कौन हूं, मुझे पता पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा मैं कौन हूं। तो यहां पर हम हमारी वास्तविक पहचान जानने के लिए आए हैं। हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर जब अपनी ही विशेषताओं की बात आती है, अपने गुणों की बात आती है, तब हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन हैं। कई बार हम जब अपनी कमजोरी बताना चाहते हैं बड़ी आसानी से बता देते हैं। मैं जैसे भाई ने कहा जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, ये है विशेषता, विशेषता है ना, हम जल्दी गुस्सा नहीं करते। पर जैसे ही गुस्सा शब्द आया ये कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाती। तो यहां पर अपने अंदर अपनी विशेषताओं को जान करके उसे और भी निखारने आए हैं, क्योंकि जैसे ही मुझे ध्यान में आएगा मेरी तो ये स्पेशलिटीज है, शांति खुशी प्यार ये मेरा अपना है, उसको मुझे कैसे बढ़ाना है ये विधि जानने आए हैं। हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहां एक भाई जिनका बिजनेस है कार वॉशिंग का, वो भाई आए थे। तो हमने पूछा कि भाई आपका इस कार्यक्रम में आने का लक्ष्य क्या है। उस भाई ने कहा, वो यंग ब्रदर थे, उनकी अभी एंगेजमेंट भी होने वाली थी, तो भाई ने कहा कि दीदी मेरे नीचे जो काम करते हैं वर्कर्स जो हैं मजदूर जैसे, मैं उन पर बहुत गुस्सा करता हूं, तो मैं यहां आया हूं ये मेडिटेशन सीखने के लिए, ये विधि जानने के लिए कि ये गुस्सा मैं ना करूं या कम करूं तो मुझे फायदा होगा कितना होगा। हमने कहा वो आप जितना प्रयास करेंगे उतना होगा, जितना अभ्यास करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो भाई ने कहा ठीक है। 7 दिन का कोर्स पूरा हो गया, फिर भाई ने कहा दीदी मुझे एक भी दिन गुस्सा नहीं आया, ऐसे क्यों हुआ। मैंने कहा वो तो आप जानो, करा आपने है, क्योंकि हम तो सबको एक जैसा ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा ये ऐसा क्या चीज है जो मैंने एक भी दिन गुस्सा नहीं किया। मैंने कहा ज्ञान, ज्ञान में वो शक्ति है, अगर वो ज्ञान को आपने अभ्यास किया प्रैक्टिस किया तो आपको वो ज्ञान का रिजल्ट जरूर मिलना है। एक और परिवार की बात याद आती है, जब हम अंधेरी में थे, मुंबई अंधेरी में एक परिवार आता था, माँ और बेटी दोनों मेडिटेशन कोर्स के लिए आते थे, और एक महीने तक वो लोग कंटिन्यूस आने लगे। फिर जो बेटी थी उनके पति आए, तो हमने उनको भी पूछा आपका प्रयोजन क्या है, क्यों आए हो आप यहां पर। तो भाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा बहन जी मेरी एक छोटी सी बेटी है 3 साल की, 1 महीने से वो मार नहीं खा रही है, और इसी कारण से हम ये जानने आए हैं, क्योंकि उसके पहले मेरी बेटी बहुत मार खाती थी, मेरी वाइफ जो है उसको थोड़ा भी मस्ती करती थी रोती थी तो उसको बड़ी मारती थी, पर अभी 1 महीने से वो मेरी बेटी जब भी उसको मारती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था, दुख होता था, पर अभी वो मार नहीं खा रही। मैं जानना चाहता हूं क्या सिखाया आपने कि उसके अंदर ये परिवर्तन आया। तो ज्ञान सुनने से परिवर्तन नहीं होता है, ज्ञान को अप्लाई करना होता है। जैसे हम सभी जानते हैं प्राणायाम कैसे करना होता है, विधि तो सभी को पता है, परंतु जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करें उससे फायदा कैसे होगा। तो हम यहां ना कि सिर्फ सुनने आए हैं परंतु उसका अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि ये जो क्लासेस आप यहां पर सुनेंगे ये क्लासेस तो आप YouTube पर भी सुन सकते हो, सुनते भी होंगे, परंतु सुनना और इस वातावरण में सुनना दोनों में अंतर है। तो हम सिर्फ यहां सुनने के लिए नहीं, हम अनुभव करने के लिए भी आए हैं। तो आप सभी तैयार हैं अनुभव करने के लिए, सभी तैयार हैं, आप सभी हमारे साथ साथ हैं, सभी सुन रहे हैं ना, सभी सुन रहे हैं पक्का, ध्यान से सुन रहे हैं, जो कहते हैं हम ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छा, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो कैसे सुन रहे हैं, वो थोड़ा सा उनको गुड मॉर्निंग करा दीजिए, गुड मॉर्निंग करा दीजिए, आपके आसपास अगर कोई पहुंचे हो। जो कह रहे हैं हम ध्यान से सुन रहे हैं वो हाथ उठाए फिर से, हाँ अभी अभी आप उठा सकते, बढ़िया। जो कह रहे हम कान से सुन रहे वो हाथ उठाए। नहीं नहीं पता नहीं पड़ रहा है, नहीं ये वाला कौन सा प्रश्न है, क्योंकि कभी नहीं कहा जाता जो कान से सुन रहे हो, हमेशा क्या पूछा जाता है, तो सुनना तो कान से ही होता है, सुनना कान से होता है, पर जब तक उसको समझा नहीं, ध्यान से नहीं सुना, तो कान से सुनने का कोई फायदा नहीं है। अभी एक हमारे यहाँ पर एक स्टील कंपनी है निवेटिया, वहां हमारे हर महीने कार्यक्रम चलते हैं, तो हम जब उनको पूछते हैं कि आप सुन तो रहे हो, मन से यहां हो, अवेलेबल हो, तो कहते हैं दीदी आप जब बात करते हो ना घर परिवार की तो हम घर में चले जाते हैं, आप जब बात करते हो कोई स्थान की तो हम वहां पहुंच जाते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, बट फिर से वापस आ जाना है इस स्थान पर। तो हमने पहली चीज समझी, हम यहां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए आए हैं। दूसरी चीज, हम यहां स्वयं को जानने के लिए आए हैं, स्वयं की विशेषताओं को, स्वयं की शक्तियों को जानने के लिए। जो हमारे अंदर शक्तियां हैं उनको बढ़ाने के लिए, जिसको हम कहते हैं एम्पावरिंग योरसेल्फ, स्वयं के सशक्तिकरण के लिए यहां आए हैं। एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। आप सभी ने ये शब्द सुना होगा, ड्यू ड्रॉप, इसको हिंदी में शायद ओस की बूंद कहते हैं। ओस की बूंद समझते हैं सभी, है ना, जो ठंडी की मौसम में वो घास के ऊपर छोटी सी पानी की बूंद होती है, कई बार गाड़ियों के ऊपर भी ऐसे छोटी छोटी पानी की बूंदे जमा हो जाती है, उसे ओस की बूंद कहते हैं। और वो जब कोई पत्तों के ऊपर या घास के ऊपर होती है ना, तो वो बड़ी सुंदर दिखती है, कोई डायमंड के जैसी चमकती है। तो ये ओस की बूंद की कहानी है। एक बारी वो अपनी जर्नी पर थी, अपनी यात्रा पर थी, और ये बूंद जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो उसको रास्ते में तितलियां मिली, बटरफ्लाइज। तो सुंदर तितलियों के कलर देख करके वो ओस की बूंद ने कहा, तुम्हारे कलर कितने सुंदर हैं, मुझे थोड़ा सा कलर दे दो ना, मेरे पास तो कोई कलर नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसका कोई कलर नहीं होता है। तो तितलियों ने कहा, जरूर, पर आप हमें आपकी क्या दे दीजिए, फ्रेशनेस दे दीजिए, ओस की बूंद ना बड़ी फ्रेश दिखती है, तो कहा आप हमें आपकी फ्रेशनेस दे दीजिए, हम हमारा कलर आपको देते। तो उन्होंने वो एक्सचेंज कर लिया। फिर वो उसकी बूंद और नीचे आई तो सुंदर फूल खिले हुए थे। तो उसकी बूंद ने कहा फूलों को कि आप जो इतने सॉफ्ट हो ना, जो पेटल्स, जो पंखुड़िया जो होती है फूलों की, बहुत सॉफ्ट होती है, तो कहा आपकी जो पंखुड़िया इतनी सॉफ्ट है, आपकी जो सॉफ्टनेस है ना वो हमें दे दीजिए। तो फूलों ने कहा हाँ जरूर, पर आपकी जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो हमें दे दीजिए। तो उसकी बूंद ने कहा ठीक है जरूर। तो ऐसे ही एक्सचेंज करते करते उसकी बूंद जब बहुत नीचे आती है तब वो बहुत हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, डल फील करती है, पहले जैसी फ्रेश फील नहीं करती है। तो उसने सोचा क्यों ऐसे हुआ, उसकी बूंद को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो गया। तो दूसरी एक ओस की बूंद थी, वो बड़ी फ्रेश थी, ट्रांसपेरेंट थी, चमक रही थी, उनको पूछा कि तुम कितनी सुंदर दिख रही हो, मैं क्यों ऐसी हूं। तो उस बूंद ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उसने कहा तुम भी तो मेरे साथ ही निकली थी, तुम भी मेरे जैसी थी, अभी क्या हो गया, तुमने रास्ते में क्या किया। अब बच्चों को कहते हो ना, अच्छा यूनिफॉर्म पहन करके भेजा था, क्या किया तुमने। तो उस की बूंद ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो तितलियां मिली थी और उनको मैंने कहा कि आपकी कलर मुझे दे दीजिए, फ्रेशनेस मुझे दे दीजिए, और मैंने उनको मेरा ट्रांसपेरेंसी दे दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी जो है ना विशेषता वो तुम ले लो। उसने कहा अच्छा ऐसे करो, हाँ हाँ ले लो। फिर से वो फूलों के पास जाती है, तितलियों के पास जाती है, और जो ओस की बूंद की विशेषताएं थी वो वापस लेकर आती है, उनकी विशेषता दे जाती है। इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिल रहा है, कि जो हमारी विशेषताएं हैं, जो हमने कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर ली है, हमने कुछ ज्यादा कमाने के लिए क्या कर दिया है, थोड़ा हमारी जीवन की मन की शांति को एक्सचेंज कर लिया, कहीं सफलता कमाने के लिए हमने हमारी खुशी को दांव पर लगा दिया। ये नहीं, आध्यात्मिकता ये नहीं कहती है सफलता नहीं पाओ, धन नहीं कमाओ, जरूर कमाए, जरूर सफलता पाए, परंतु हमारी शांति और हमारी खुशी को दांव पर लगा करने। तो ये जो हमारी शांति खुशी है, इसको फिर से अनुभव करने और कराने के लिए हम यहां आए। यहां पर बहुत सारा ज्ञान की जो बातें हैं, आप कहेंगे हमने तो ये सुनी थी, हमें तो ये पता है, पता है पर उस पर चल रहे हैं, तो ये एक रिमाइंडर होगा, ये एक स्मृति होगी फिर से हमारे लिए। हम यहां पर एक विधि सीखने आए हैं और ये विधि है कैसे हम अपने मन को शांत बनाएं, सशक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। हम एक मेडिटेशन की विधि यहां सीखेंगे। आप सभी मेडिटेशन शब्द तो सुने ही है, है ना, बोलते हैं ना बार बार मेडिटेशन सीखने जाना है। तो ये मेडिटेशन क्या है और उसकी प्राप्तियां क्या है, ये हम यहां सीखेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो बिजनेस इंडस्ट्री विंग के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इस कार्यक्रम में बहुत सारे पूरे भारत से आप सभी पधारे हुए हो और आप सभी को अपने ज्ञान को शेयर करने के लिए हमारे साथ बहुत अनुभवी फैकल्टीज होंगी, स्पीकर्स होंगे। जो कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, और जो हमारे बड़े हैं जो इसी कैंपस में मधुबन में ही रहते हैं, यहीं पर वो तपस्या कर रहे, वो भी आप सभी से मिलेंगे। और यहां पर अनुभव करने के लिए बहुत जरूरी होगा कि हम सारे सत्र को, सारे ही प्रोग्राम्स को अटेंड करें। आपके साथ कुछ गाइड भाई बहने भी आए होंगे, शायद वो भी कहेंगे चलो हम आपको वहां घुमाने लेकर जाते हैं, चलो हम आपको वो दिखाने लेकर जाते हैं, परंतु हम अपना लक्ष्य बहुत स्पष्ट रखेंगे, हम यहां पर अनुभव के लिए आए हैं। तो ये जो अनुभवी जो भी स्पीकर्स है, उनसे हम जरूर उनके अनुभवों की लेन देन करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, मिस नहीं करेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और हर सेशन के 5 मिनट पहले आप जरूर सभी पधारेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति है जब भी कोई गुरु या हमारे कोई टीचर आते हैं तो उसके पहले हम पहुंच जाए, क्योंकि ये हमारे लिए स्कूल भी है। अगर ये स्कूल है तो हम कौन हो गए, हम सब कौन हो गए, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, गॉडली स्टूडेंट, ईश्वर के विद्यार्थी। और हमारा जो टीचर है हम सभी का, वो है ईश्वर। तो इसलिए हम सभी उस पढ़ाई को पढ़ने के लिए आए हैं, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े डिसिप्लिन से हम इस पढ़ाई को पढ़ेंगे। हम इस बात का भी जरूर ध्यान रखेंगे कि हम अलर्ट होकर और अपने मोबाइल को साइलेंट पर, अभी उल्टा होता है, हम साइलेंट में चले जाते हैं, मोबाइल अलर्ट होते हैं, अर्थात ये ध्यान रहे कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ये बहुत बेसिक बातें हैं, पर इसलिए बताई जाती है क्योंकि जब हमारे सामने कोई बड़े आए हैं ज्ञान सुनाने, ज्ञान को शेयर करने, तो ना हम डिस्टर्ब हो ना औरों को डिस्टर्ब करे, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। कुछ एक और भी डायरेक्शंस आपको हम शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि ये परमात्मा का घर है, आप सभी का घर है, अपना घर है, तो आपको यहाँ पर जो भी भोजन प्राप्त होगा वो प्रसाद होगा, वो बड़ी प्यार से परमात्मा की याद में बनाया जा रहा है। इसीलिए आपको जितनी भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन आप अपनी थाली में लेंगे, क्योंकि प्रसाद को फेंका नहीं जाता है, वेस्ट नहीं किया जाता है। आप दूसरी बारी जरूर ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम घर में भी हम नहीं खा पाते हैं, बच जाता है, हम फेंक देते हैं। वैसे तो अन्न का निरादर हुआ, परंतु यहां तो खास प्रसाद बन रहा है, इसलिए इस बात का भी हम जरूर ध्यान रखेंगे। यहां पर पानी और बिजली, जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर निकलेंगे उस बात को थोड़ा अटेंशन से, ये बहुत बेसिक बातें हैं, फिर से बता रहे हैं, जैसे हम अपने घर में ध्यान रखते हैं वैसे ही आप यहां पर भी ध्यान रखेंगे। परमात्मा के घर में कुछ भी कमी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, परंतु व्यर्थ भी नहीं जाए। एक और बात जो आप सभी को यहां जानने और सुनने और समझने मिलेगी वो है यहां के सेवाधारी। जैसे आप यहां पर अपना कारोबार छोड़कर आए हो, क्योंकि ऐसे कहते हैं बिजनेसमैन मतलब सबसे बिजी मैन, उनको समय नहीं होता है, परंतु जो आप अपना कारोबार छोड़कर आए हैं उसी तरह से यहां पर करीबन 600 से 650 सेवाधारी आए हैं आप सबकी सेवा में, वो भी अपने कारोबार छोड़कर आए हैं। उसमें से कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ इंडस्ट्री के कंपनी के मालिक भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो सेवा में आए हैं, और कुछ माताएं बहनें भी हैं जो पीछे अपने परिवार को छोड़कर आई है आपके ही जैसे, बड़े खुशी से बड़े प्यार से सेवा के लिए आए हैं। आप उनको भी देख करके उनसे भी कुछ सीख सकते हैं, हम भी आपसे सीखते हैं, क्योंकि भावना तो सीखने की है ना। तो इन सेवाधारियों के बारे में मैं बता रही थी कि ये सभी सेवाधारी इतने खुशी से इतने उमंग उत्साह से, भले वो अपने फील्ड में कोई बड़े पोजीशन में होंगे, बट यहां पर वो माताएं सब्जी कटिंग कर रही होंगे, यहां पर वो भाई लिफ्ट चला रहे होंगे, यहां पर वो भाई गाड़ी चला रहे होंगे। तो परमात्मा के घर में एक ही भाव होता है सेवा का, क्योंकि ये भी हमें ऑब्जर्व करना है, ये भी हमें जानना है, अनुभव करना है। साथ साथ हमारे आने का एक और लक्ष्य, हम यहां पर ये विधि समझेंगे कि हम अपने संबंधों में मिठास कैसे लाए, संबंधों को इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि हर एक को फील होता है, चले हम एक मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे संबंध मधुर है, ठीक है, चेक करें हम। चले सभी सीधा बैठेंगे एक मिनट के लिए, सीधा बैठेंगे सभी। हाँ जी, आप चाहो तो अपनी आंखें बंद भी कर सकते हो, एक आंतरिक यात्रा होगी, अपने मन को हमें चेक करना है, अपने जीवन में कैसी हमारी जीवन में कैसे संबंध चल रहे, बस उसको चेक करेंगे। चले अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। कुछ समय के लिए अपने परिवार के सदस्यों को देखिए अपने मन की आंखों से, और देखिए क्या मेरे परिवार के हर सदस्य के साथ मधुर संबंध है, चेक कर लीजिए क्या मेरे परिवार के हर सदस्य के साथ मधुर संबंध है। अभी जहां पर आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, क्या मेरे उन सभी के साथ मीठे संबंध है, विचारों में भेदभाव होना अलग बात है, मेरे आसपास पड़ोस में क्या मेरे सभी के साथ अच्छे संबंध है, चेक कर लीजिए। आप अपनी आंखें खोलिए। जिन्होंने सोचा, चेक किया, जिनको लगता है मेरे सभी के साथ मधुर संबंध है, चाहे परिवार हो या बिजनेस वाल के साथ हो या आस पड़ोस में सबके साथ अच्छे संबंध है, वो हाथ उठाएंगे। सबके साथ अच्छे संबंध है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिनको लगता है कहीं थोड़ी थोड़ी खिटपिट होती है, चलो वाणी से नहीं होती है पर विचारों में थोड़ा टकराव होता है, वो थोड़ा हाथ उठाना। किसी ने दोनों में तो नहीं उठाया? अच्छा, ठीक है। तो चलो, अभी तो मेरे सबके साथ अच्छे संबंध हैं, भविष्य में ना हो उसके लिए भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। मुझे एक बात याद आ रही है, एक बहन दुबई से आए थे और बहुत दुखी थे क्योंकि उनके पति के साथ थोड़े संबंध ठीक नहीं थे, थोड़े नहीं ज्यादा ठीक नहीं थे, और बातें वहां तक पहुंच गई थी कि उनका डिवोर्स होना था। और पर वो बहन खुश नहीं थी, नेचुरली खुश तो नहीं ही होंगी जब डिवोर्स होना है। तो वो मेडिटेशन के लिए आए थे और हमने जब उनको पर्पस पूछा तो उन्होंने कहा कि दीदी, मैं दुबई में रहती हूं और पति के साथ बन नहीं रही है। वो अपनी जन्म कुंडली दुबई से इंडिया भिजवाती थी उनकी और पति की, और फिर वो ज्योतिष को पूछती थी कि हमारा भविष्य क्या है, और ज्योतिष की ओर से वो जवाब मिलता था कि डिवोर्स है। अच्छी फीलिंग्स नहीं आई थी बहन को, उन्होंने दूसरे ज्योतिष को पूछा। जो हमें अच्छा, हम जो चाहते वो जवाब नहीं मिलता है ना, हम क्या करते हैं? हम दूसरे के पास जाते हैं। उन्होंने जब दूसरे ज्योतिष को पूछा, दूसरे ज्योतिष ने कहा आपके पति को ब्रेन हेमरेज होगा। वो बहुत दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा कि दीदी क्या करें? हमने कहा क्या करें, क्योंकि बहन ज्ञान सुन सके ऐसी कंडीशन में नहीं थी क्योंकि बहुत रोती थी। तो हमने उनको कहा कि उस दिनों में शिवानी बहन आए थे, तो हमने कहा कि आप, शिवानी बहन का लेक्चर है, आप जाकर के सुने, आपको अच्छा फील होगा। तो सुने, दो दिन के बाद आई, बड़ी खुश थी, बहुत खुश थी। हमने कहा अच्छा, लेक्चर सुनकर के इतनी खुश हो गई है बहन? तो हमने कहा बहन आपको बहुत अच्छा लगा? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें उनको अच्छी लगी, पर एक बात जो उन्होंने अपने दिल में बिठा ली थी वो बात ये थी, आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हो। कौन सी बात थी? आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसीलिए कहते हैं आपका भाग्य आपके अपने हाथों में है। और ये बात वो बहन ने अपने मन में बिठा ली और उन्होंने कहा कि अगर मेरा भाग्य मेरे हाथ में है तो मैं डिसाइड करूंगी डिवोर्स होना है या नहीं होना है। फिर वो बहन जब घर गई, बहुत सारी बातें, क्योंकि सुनने के बाद थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है, याद करते हैं, स्मृति आती है, कहां कहां मेरी मिस्टेक हुई है, कहां मैंने गड़बड़ की है, कहां मैं सही थी, कहां मैं गलत थी, वो हर बात उसको बुद्धि में आने लगी। बहुत रोना भी आया उनको। और फिर उन्होंने अपने पति को एक मैसेज भेजा। वो मैसेज थोड़ा लंबा था कि मेरी यहां यहां गलतियां हुई है, यहां मैं समझ नहीं पाई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर लास्ट में उन्होंने एक वाक्य लिखा और ये था, क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? और उनके पति ने सिर्फ एक शब्द में भेजा, क्यों नहीं। सिर्फ सिंपल, क्यों नहीं। और वहीं पर डिवोर्स की बात समाप्त हो गई। बहन इतनी नेचुरली इतनी खुश थी, वो बहन इतनी खुश थी, और फिर वो दुबई चली गई, परंतु वो कॉन्टेक्ट में रहती थी। 15 दिन के बाद उन्होंने कहा, दीदी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर मेरी ननद के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हमने कहा, क्या करना चाहते हो आप? तो बोले, दीदी आप बताएं क्या करना है। हमने कहा, आपने तो अनुभव किया है, आपने अभ्यास किया, अनुभव किया, अभी आप देखो। उन्होंने कहा, दीदी थोड़ा सा गाइड करो। हमने कहा, आप अपनी ननद के बारे में अच्छा अच्छा सोचो। बोले, उनमें कुछ अच्छा नहीं है। हमने कहा, ऐसे नहीं होता, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर होती है, आप कुछ अच्छा सोचो। हाँ दीदी, वो फैशन उसका बड़ा अच्छा है, फैशन स्टाइल उसका अच्छा है। दीदी वो खाना अच्छा बनाती है। ठीक है, जो भी है आप अच्छा सोचो, रोज जब भी ननद को याद करते हो अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। करीबन शायद 1-1.5 महीने के बाद वो बहन ने फोन करके बताया, दीदी अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे पति से भी ज्यादा उसके साथ मेरी बनती है। हमने कहा, कैसे? बस उसके बारे में अच्छा सोचती थी, जबरदस्ती, मेरा दिल नहीं मानता था पर मन को फोर्स करती थी, अच्छा सोचो अच्छा सोचो। दीदी एक और प्रॉब्लम है। मैंने कहा, मत सुनाओ, खुद सॉल्व करो। नहीं दीदी अब सुनो ना। हमने कहा, अच्छा बोलो। उन्होंने कहा, देवर के साथ ठीक नहीं है। दीदी मुझे विधि पता है, मैंने उनको उसी विधि अनुसार उनको वाइब्रेशंस दिए और फिर मैसेज भेजा, पर सामने से बहुत बुरे बुरे शब्द उन्होंने मुझे कहे, क्या करूं? मैंने कहा, बंद नहीं करना वाइब्रेशंस देना, उनके बारे में अच्छा सोचना आप चालू रखो, कभी तो रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा, हाँ ये बात तो राइट है। फिर उन्होंने 1 महीने बाद फिर से फोन करके कहा, दीदी बहुत अच्छा हुआ। हमने कहा, अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया? नहीं, न्यूट्रल, अभी गाली नहीं दिया, अभी कुछ मैसेज उनकी ओर से नहीं आया है। मैंने भेजा पर उन्होंने कुछ मैसेज नहीं भेजा। मैंने कहा, इसमें अच्छा क्या हुआ? दीदी पहले तो बुरा बुरा लिखा था, अभी तो कुछ नहीं लिखा ना, तो उतना तो जीरो हुआ ना, नेगेटिव से तो जीरो हो गया, तो अभी पॉजिटिव भी होगा। तो जैसे ही अनुभव हो जाता है ना कि जब मैं किसी के बारे में अच्छा सोचती हूं तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो वो बहन ने अभी वो औरों को टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया। तो जब मुझे अनुभव होता है तो हम इस अनुभव के आधार पर औरों का भी भला कर सकते हैं। तो वो उनकी बेटी के लिए भी वही करती है, बेटी को भी वही सिखाती है। तो ये जो ज्ञान है वो हमें हेल्प करता है हमारे संबंधों को मधुर बनाने के लिए। बहुत सारी बातें हम जानते हैं पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जिस दिन मुझे यहां पर मधु बनाना था उसी दिन एक कपल आए थे और वो चाहते थे अपनी बातों को शेयर करना। जिनको प्रॉब्लम थी वो बहन जो आई थी वो नहीं शेयर कर पा रही थी, वो अपने पति को बोल रही थी, आप बोलो ना, आप ही बोलो ना। उनके पति ने कहा, आप बोलो, क्योंकि हम जब शेयर नहीं करते हैं ना, बताते नहीं है ना, तो अंदर 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 सप्रेस होता है और उसी सप्रेशन के कारण फिर बीमारी आती है। तो वो बहन को ब्रेन में एक ट्यूमर हो गया है। क्योंकि जब भी हम अपने संबंधों को सुलझा नहीं पाते हैं, अपने मन को समझा नहीं पाते हैं, यही बातें हमारे मन को दुखी करती है, फिर उसकी असर होती है हमारे शरीर पर। पहली असर हमारे शरीर पर होती है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, 70-80% बीमारी का कारण क्या है? हमारे अपने मन के विचार। ये हम सभी जानते हैं, ऐसा है कि जिसको ये पता नहीं हो, परंतु मैं मेरे मन को क्या दिशा दूं, मैं मेरे मन को क्या गाइड करूं कि मेरा मन स्थिर रहे, स्टेबल रहे। मैं कुछ दिनों पहले जब एक कंपनी में प्रोग्राम कराने गए थे तो हमने वहां प्रश्न पूछा कि आपके घर में जब आप भोजन करते हो और उस समय भोजन में कोई चीज अच्छी नहीं बनी, आपके टेस्ट अनुसार नहीं बनी, नमक थोड़ा ज्यादा या कम हो गया, आपकी ओर से रिस्पॉन्स क्या रहता है? तो उसमें से एक भाई ने कहा, कुछ नहीं, चुपचाप खा लेना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खा रहे हैं, मेरे माता पिता खा रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे भी खा लेना है। एक भाई ने कहा नहीं बताते हैं, तो हमने पूछा क्या बताते, कहा नमक कम है। मैंने कहा देखो कोई व्यक्ति जब बहुत मेहनत करके, क्योंकि भोजन कई लोगों को आसान लगता होगा, भोजन गर्मी में जाकर के बनाना, और चलो मेहनत लगी हो या नहीं लगी हो, पर जब किसी ने कुछ थोड़ा एफर्ट्स किया होता है और उसको उसमें कोई कमी दिखाता है, तो उनका रिजल्ट कैसा होता है माता है, क्या फील होता है? अच्छा फील होता है जब कोई आपकी कमी निकालता है? किसी को भी अच्छा फील नहीं होता है। तो हम कहते ऐसे नहीं कहते कि सत्य नहीं कहो, परंतु उसको किस तरीके से आप रख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बना है, पर अगर थोड़ा सा नमक कम होता था और अच्छा लगता था। आप कितने प्यार से, कितनी अंडरस्टैंडिंग से उस बात को रख रहे हो। इसीलिए कहा गया है सत्यम वदम प्रियम वदम, सत्य तो जरूर हो परंतु मीठा भी हो। तो हमारे संबंधों को हम कैसे मधुर बनाए, इसकी विधि को भी हम यहां समझने का प्रयास करेंगे, परंतु सिर्फ समझेंगे नहीं, हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। आज से ही शुरू कर सकते हैं वो प्रैक्टिस को, सबके बारे में अच्छा सोचना। जो बोईसर में एक तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, वहां हमारे प्रोग्राम्स चलते थे, जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते थे 3 दिनों तक उनके प्रोग्राम होते थे, कंटिन्यूअस फुल डे, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। तो पहले दिन हम उनको होमवर्क देते थे, आज आप घर जाएंगे ना टीवी नहीं देखेंगे, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ेंगे, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएंगे, ये उनका होमवर्क होता था। आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, परिवार के साथ खुली टाइम बिताओ, मतलब बातें करें। हमने कहा नहीं, जो आपको करना है पर परिवार के साथ, भोजन करेंगे परिवार के साथ, कुछ खेल रहे होंगे परिवार के साथ। तो बोले परिवार के साथ टीवी देख सकते, हमने कहा नहीं, वो परिवार के साथ टीवी नहीं देख रहे हो आप, सिर्फ टीवी ही देख रहे हो, साथ देख रहे हो नहीं होता है। तो उनको वो होमवर्क देते थे। दूसरे दिन जब उनको पूछते थे उस होमवर्क का क्या हुआ, तो कहते थे दीदी ऐसा होमवर्क दिया मत करो, क्योंकि जब हम परिवार को समय नहीं देते हैं ना, तो परिवार जो है अपना टाइम कहीं ना कहीं फिक्स कर लेते हैं। तो बच्चों ने अपना टाइम फिक्स कर लिया था और फ्रेंड्स के साथ खेलना, उन्होंने उनकी जो वाइफ होती थी उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना टाइम फिक्स करके रखा था, थी कहीं पार्टीज होती थी। तो वो जब हमने कहा कोई हर्जा नहीं, आज फोन करके बता दो और कोई प्रोग्राम नहीं बनाना, आज हम साथ में ये खेलेंगे या साथ में भोजन करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी, जैसे होमवर्क है हम वैसे करेंगे। सबने फोन किया, प्रोग्राम दिया कि आज हम जब आएंगे 5-6 बजे कोई और प्रोग्राम नहीं बनाना। उनकी वाइफ फोन पर ही बता रही है क्या चल रहा है, आप वहां कार्यक्रम में जा रहे हो, ये सब आप वहीं से सीख कर आ रहे हो ना, आप 2 दिन ये करेंगे, 3rd दिन वही पुराना चल जाएगा आपका, हमें नहीं करना आपकी बात। देखो कहने का भाव क्या होता है कि जितना हम समय देंगे, क्योंकि हम कमाई भी उसी लिए कर रहे हैं, परिवार को समय देना अर्थात अपने स्ट्रेस का लेवल कम करना। तो हम यहां टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं, कहां पर मुझे ज्यादा समय देना है ना। मैं एक बहन को कल सुन रही थी उनकी बातें, वो बहन ने बहुत सुंदर एक्टिविटी कराई, उन्होंने कहा अपने आप को पूछे मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कितना समय देती हूं। तो उन्होंने कहा, बहन ने कहा अपने हाथों से बताइए, इतना समय इतना समय इतना समय इतना समय कितना समय देते आप बताएं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए कितना समय देते हो, अपने हाथ कर इतना आप बताएं, सभी बताएं कितना समय, हर एक अपना अपना बताएं। माताएं देते नहीं देते, जो ऐसे ही बैठे वो नहीं देते। अच्छा धन कमाने के लिए कितना समय देते भाई, इतना ज्यादा जरूर दे। अच्छा मन की शांति के लिए कितना समय देते, वो भी चेक कर ले कि हम कहां समय कितना दे रहे। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी हम यहां पर सीखते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे स्वास्थ्य के लिए क्यों दे, जरूर देना है, परंतु हर एक चीज का अपना समय होता है, परिवार को कितना समय देते हैं वो भी बताएं, परिवार को कितना समय देते हैं, चेक करें अपने आप को। एक और परिवार की बात याद आ रही है, जो मेडिटेशन कोर्स के लिए भाई आते थे, हमने उनको जब ये प्रश्न पूछा आपको क्यों करना है, भाई ने बड़ा ऑनेस्ट जवाब दिया, दीदी मुझे शेयर मार्केट में बहुत लॉस हुआ है करीबन 25 लाख का, और मुझे स्ट्रेस आया है तो मैंने शराब पीना शुरू किया है, तो घर वाले बड़े नाराज हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो आप क्या करना चाहते हो? तो मुझे थोड़ा मन की शांति चाहिए। हमने कहा ठीक है, आप ज्ञान सुनिए, आपको क्या फीलिंग्स आ रही है वो देखिए। वो भाई ने जब मेडिटेशन कोर्स करते थे कर रहे थे तो हमारी ये एक्टिविटी मेडिटेशन कोर्स के दरमियान होती है कि अपने परिवार के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखे ताकि वो परिवार के लिए पॉजिटिविटी आए। तो उन्होंने जब माता पिता के लिए अच्छी अच्छी बातें लिख दी, बच्ची के लिए भी अच्छी बातें लिख दी, पत्नी के बारे में नहीं आ रहा था। तो हमने फिर से कहा अच्छा, आपकी पत्नी के बारे में तो लिखा ही नहीं। तो उनका सेम जवाब था, हाँ मतलब नॉर्मल। हमने कहा नॉर्मल ही है, अच्छा बताओ। तो उनको ध्यान नहीं आ रहा था, क्योंकि सोचते नहीं है ना, तो ध्यान में नहीं आ रहा था। हमने कहा आपकी पत्नी आपके माता पिता का अच्छा ख्याल रखती है? हाँ हाँ, कोई कंप्लेन नहीं। हमने कहा वो अच्छी बात नहीं है, वो तो पत्नी का फर्ज है, उसमें क्या बड़ी बात है। हमने कहा अच्छा, आपकी बच्ची की अच्छी पालना कर रही है, उसको अच्छी शिक्षाएं दे रही है? हाँ हाँ, अच्छा संस्कार देती है, मेरी पत्नी टीचर है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो वो लिखा नहीं, वो तो माँ का फर्ज है। हमने कहा अच्छी बात है। करीबन 20 दिन उस भाई का मेडिटेशन कोर्स चला, क्योंकि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर उन्होंने मुझे 20 दिन के बाद कहा, दीदी आपने मुझे एक भी बारी नहीं बताया शराब नहीं पियो। हमने कहा नहीं बता रहे, आपको पता है पीना है नहीं पीना है, आप डिसाइड करो भाई। मेरे बोलने से आप छोड़ेंगे, किसी के बोलने से शुरू भी करेंगे, आप निर्णय लो। क्योंकि जो परिवर्तन होता है ना, वो अंदर से आता है। मेरे कहने से अगर कोई परिवर्तन किया, किसी और के कहने से और दूसरा परिवर्तन हो जाएगा। तो परिवर्तन कहां से आता है? अंदर से आता है। एक बहुत सुंदर बात किसी ने कही है, जो एक एग होता है, जो अंडा होता है, वो जब बाहर के प्रेशर से फूटता है ना, तो एक जान चली जाती, परंतु वही अंडा अगर अंदर के प्रेशर से फूटता है, एक जान बाहर आती है। तो जो भी परिवर्तन है, जो भी क्रिएटिविटी है, वो हमारी अंदर से आती है। तो जब हम निर्णय लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो वो हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगी आपको क्या करना है, क्योंकि आप समझदार हो, सही गलत आप जानते हो। वो भाई को मेडिटेशन कोर्स करके करीबन 6 साल हो गए अभी, क्योंकि हम दूसरे सेंटर पर गए थे तो वो वहां मिलने आए थे। तो कहा दीदी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर हमने इन कार्यक्रम के लिए इनवाइट भी किया था उनको। तो उन्होंने कहा कि दीदी घर में जो है मेरी बेटी का जन्म, बच्चे का जन्म होने वाला है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। हमने कहा ठीक है, परिवार आपकी प्रायोरिटी है तो जरूर वहां महत्व दीजिए। परंतु वो भाई ने कहा दीदी मैं अगले कोई प्रोग्राम में जरूर आना चाहूंगा, आप मुझे बताना। क्योंकि ये ध्यान में है कि इस ज्ञान को जब उन्होंने प्रैक्टिस किया तो जीवन में वो कितने आगे बढ़े। उनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, रिश्ते अच्छे से निभा पा रहे हैं और कोई बुरी आदत उनको नहीं है। क्योंकि व्यक्ति समझ जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो ये ज्ञान एक आईना है, कहां हम गलत जा रहे हैं उसकी हमें क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि अक्सर करके जब हम किसी को गुस्सा करके कुछ कहते हैं ना, तो हमें यही लगता है नहीं मैं राइट हूं, उसने ऐसे किया इसीलिए मैंने ये कहा। पर आध्यात्मिकता हमें बताती है कि जो मेरे नेचुरल नेचर के विरुद्ध है वो सही नहीं है। जैसे आप कभी भी गुस्सा करते हो तो आपको बड़ी मजा आती है। कोई ऐसा कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने आज गुस्सा किया, किसी को बड़ी मजा आती है, एंजॉय करते हैं, खुशी होती है गुस्सा करने के समय। कोई मुस्कुराते हुए गुस्सा करता है? पॉसिबल नहीं है। वो करने के बाद हम कोई बहुत शक्तिशाली महसूस नहीं करते। तो ये ज्ञान हमें रियलाइज कराता है, महसूस कराता है कि हम कहां पर सही जा रहे हैं, कौन सी सही दिशा में हमें जाना है। तो यहां पर इन जो तीन दिन के जो ये कॉन्फ्रेंस है कि आध्यात्मिकता द्वारा कैसे हम व्यापार और उद्योग में सफलता पाए, कैसे अपने आप को शक्तिशाली बनाए, क्योंकि बिजनेस में भी तो सफलता पानी है ना। आध्यात्मिकता ये नहीं कहेंगे बिजनेस में सफलता नहीं पाओ। अभी जहां से जैसे बहन ने इंट्रोडक्शन में बताया था कि बोईसर में एक बोईसर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर करीबन 2000 इंडस्ट्रीज है। वहां एक स्टील फैक्ट्री है विराज प्रोफाइल्स, ये इसके जो ओनर है मिस्टर नीरज कोचर जी, लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने मेडिटेशन सीखा था ऑनलाइन, तो उनको बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि बिजनेस में हरेक को उस समय बहुत लॉस हुआ था। तो वो व्यक्ति का भी जो फैक्ट्री उनके कंपनी में करीबन 10,000 लोग काम करते हैं, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा था, तो उनको स्ट्रेस आया था, तो उन्होंने सोचा मेडिटेशन करते हैं, तो शिवानी दीदी को सुना था, फिर उन्होंने मेडिटेशन सीखा, तो जो उनको अच्छा लगा उन्होंने सोचा मेरे सारे वर्कर्स जो है उनको भी ये मेडिटेशन कराना है। तो उन्होंने उनकी फैक्ट्री में ही बड़ा सा 200 लोग बैठ सकते हैं ऐसा एक स्थान बनवाया, और फिर उनकी कंपनी में उन्होंने कंटिन्यूअस प्रोग्राम शुरू किए, सीनियर्स के होंगे या फिर उनके वर्कर्स के होंगे, तो जब भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी को एक चीज बहुत अच्छे से वो पक्की कराते हैं। ये चीज जब वर्कर्स देखते हैं तो उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये हमारे अच्छाई के लिए भी ये काम कर रहा है। क्योंकि जो नीरज भाई है वो हमेशा एक शब्द बोलते हैं, मेरा 10,000 का परिवार है, मेरा 10,000 का परिवार है। तो हमने ये महसूस किया कि उनको जो मिला वो चाहते हैं सबको मिले। वो अभी जो हमारा अगस्त में माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस था उसके लिए भी वो आए थे, इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी उनको इनवाइट किया था, परंतु कुछ मीटिंग्स के कारण वो आ नहीं पाए, पर उन्होंने मैसेज जरूर दिया है कि आप जरूर बताना, मेरे बारे में भी बताना कि क्या मुझे फर्क पड़ा है। क्योंकि वो भाई का ऐसे था, बड़े गुस्से वाले भाई थे, अगर उनके कोई मैनेजर भी होंगे उनके हिसाब से काम नहीं किया होगा वो सबके बीच में मीटिंग में उनको थप्पड़ मार सकते और फिर एक सेकेंड में बोलेंगे तुम निकल जाओ। तो सब उनसे डरते थे, और अभी परिवर्तन ये हुआ है, उनकी हर मीटिंग के पहले 2 मिनट मेडिटेशन होता है। उन्होंने हर उनकी फैक्ट्री में, क्योंकि करीबन 10 उनकी फैक्ट्रीज है, और वो फैक्ट्रीज में हर एक में उन्होंने मेडिटेशन रूम बनाया है, जहां पर मीटिंग्स होती है वहां पर ऐसे जो यहां पर आपने देखा होगा रेड लाइट्स जो हर करते हैं मेडिटेशन के लिए, वो लाइट चालू होती है, म्यूजिक बजता है, मेडिटेशन करते उसके बाद मीटिंग शुरू होती। और ऐसा नहीं है बहुत बिजी है तो मेडिटेशन नहीं करेंगे, उनके दिन की शुरुआत होती है सवेरे 3:30 बजे से। वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं ये मेडिटेशन मिस नहीं करता हूं क्योंकि मुझे इसी में शक्ति मिलती, बाकी तो मेरा बिजनेस में टाइम जाता है पर इसी में मुझे शक्ति मिलती। और जब भी वो बोईसर आते हैं, क्योंकि बॉम्बे वो रहते हैं, जब भी वो बोईसर आते हैं सेंटर पर मेडिटेशन रूम में जरूर आएंगे। तो ये परिवर्तन उनके सिर्फ हम नहीं देख रहे, उनके जो फैक्ट्री के वर्कर्स है, जो बाकी एम्प्लॉयज है, वो सब वो परिवर्तन देख रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि सभी को वो मिले जो मुझे मिला है, मन की शांति। तो कारोबार छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है, परंतु कारोबार करते हुए भी कैसे हम अपने मन को शांत रखें, कैसे हम अपने मन को स्थिर रखें। ऐसा नहीं है उनके प्लांट में और प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी, रोज कुछ नए नए विघ्न आते हैं, रोज आते हैं, कभी स्ट्राइक की बातें निकलती है, कभी कुछ और बातें निकलती है, परंतु वो स्थिर होकर के डिसीशंस लेते हैं। तो परमात्मा की ये शक्ति कैसे हमें निर्णय लेने के लिए भी शक्ति प्रदान करती है, कैसे हम परमात्मा की टचिंग्स को कैच करें। आप सभी जानते होंगे जब भी भूकंप आदि होता है सबसे पहले किसको पता पड़ता है, सबसे पहले किसको पता पड़ता है, पंछियों को और पशुओं को, जानवरों को। क्यों इंसानों को पता नहीं पड़ता? हाँ जी, हम समझदार नहीं है, हमारे पास तो बहुत मशीन्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, तो हमारा माइंड क्यों वो कैच नहीं कर रहा है जो पशु पंछी कैच कर रहे? तो हमारा जो मन है ना, बहुत एंगेज हो गया, बैठे यहां होंगे, चल कुछ और रहा होगा मन के अंदर। पशु पंछियों को वो सारी बातें बुद्धि में नहीं है, बिल भरना है, वहां कुछ और करना है, वो सारी बातें उनको बुद्धि में नहीं है। हमारी बातें माइंड में चलती रहती है, माइंड बहुत एंगेज है। तो जो परमात्मा की टचिंग्स होती है, जो सिग्नल्स होते हैं, वो कैच नहीं कर पाते। तो इस परमात्मा सिग्नल को मुझे कैसे कैच करना है, वो भी हम यहाँ पर उस विधि को भी, उस टेक्निक को भी हम यहाँ पर सीखेंगे और समझेंगे। तो इसीलिए आप सभी को फिर से कहते हैं, कोई भी सेशन आप मिस नहीं करिएगा, समय पर पहुंचिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी मिस हो जाएगा, हो सकता है वो आपको आपके बिजनेस में, परिवार में यूजफुल होने वाला हो। और जो भी सारी फैकल्टीज है बहुत अनुभवी है, बड़ी बड़ी कंपनीज में वो प्रोग्राम भी कराती है, बड़े बड़े पूरे भारत से उनको निमंत्रण मिलते हैं वो प्रोग्राम कराने के लिए। और आज इसका जो अगला सत्र है, आप अभी 8:30 के बाद आप नाश्ते में जाएंगे, नाश्ते के बाद आप फिर से यहीं पर आएंगे, आपका अगला सत्र है आध्यात्मिकता क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में। और इस कार्यक्रम का जो इनोग्रेशन है वो आज शाम को, आप सभी के पास मैसेज आए होंगे, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं आप सभी को, आप आशीष भाई अगर हो तो आप सभी को वो इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। अगर वो जुड़ने वाला जो आपको लिंक भेजा होगा उस पर आप क्लिक करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। यहाँ पर इस कैंपस को, जिसको हम शांति वन कहते हैं, ये बड़ा कैंपस है, सबसे बड़ा, यहाँ पर हमारे सारे कार्यक्रम, अभी इसके बाद का जो सेशन है वो यहीं पर होगा, परंतु उसके बाद के सारे कार्यक्रम, हमारे जो बड़ा हॉल है डायमंड हॉल जो सामने ही है, सारे कार्यक्रम वहीं पर होंगे, आज शाम से जो शुरू होगा कार्यक्रम। और यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ दादियां, जिनकी स्मृति में यहाँ पर शक्ति स्तंभ बना है, प्रकाश स्तंभ बना है और अव्यक्त लोक बना है, आप वहां भी साइलेंस में अभ्यास करना, मेडिटेशन का, परमात्मा की दिव्य शक्तियों का अनुभव करना। क्योंकि यहां पर भी अगर बिजनेस की बात करेंगे या घर की बात करेंगे तो फिर अनुभव नहीं हो पाएगा। यहां पर स्वयं से बात करना, स्वयं से कौन कौन बात करते हैं, स्वयं से, तो स्वयं से बात करना है, जोर से नहीं करना, साइलेंस में करना, नहीं तो बोलेंगे इनको क्या हो गया, अकेले अकेले बात कर रहे। सो साइलेंस में स्वयं से बात करना, ठीक है ना। और यहाँ के जो भी बहुत सुंदर सुंदर स्थान बने हुए हैं, आपका एक दिन साइट सीन के लिए भी रहेगा, ठीक है, तो वो उस दिन आप माउंट पर जाएंगे, जो ब्रह्मा बाब की तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है, वो स्थान पर आप जाएंगे। यहाँ पर ही अपना सोलार का बहुत बड़ा प्लांट है, वो भी आप जैसे जैसे समय मिलेगा आप सारे स्थान को भी देखिएगा, परंतु कोई भी सेशन मिस करके नहीं। तो अभी हम कुछ पल के लिए मेडिटेशन करेंगे, स्वयं से बात करेंगे, ठीक है। चले सभी सीधा बैठेंगे, हम कुछ अफर्मेशंस लेंगे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स लेंगे। कुछ समय के लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे स्वयं पर, और बहुत सुंदर विचार अपने मन में लाए, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। मन ही मन रिपीट करेंगे इस बात को, मैं इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं। इस सुंदर स्थान पर पहुंची हूं स्वयं के लिए, स्व उन्नति के लिए, स्वशक्तिकरण के लिए। मैं बहुत कुछ जानने और सीखने की इच्छुक हूं। नया जानना, नया सीखना मुझे अच्छा लगता है। मैं यहां अपना सारा समय इसी स्व उन्नति में देने आई हूं। अपने मन को शांत और स्थिर बनाने की विधि जानने आई हूं।